पिताजी का संबंध होने वाला है, इसलिए विश्व के समस्त राष्ट्रों के राजकुमार, बड़े बड़े बलि राजा, दैत्य दानव, देवता लोग भी वहां पर किसी न किसी रूप में। अभी दो दिन पहले की बात है, उस समय कह रहा हूं, आज के दो दिन में रावण ने सुता के पिताजी का पर जनक की कन्या का व्रत जरा पिताजी को तो देखे तो उसने किसी छल बहाना करके कोई रूप बना करके उनको तो देखा मुग्ध हो गया। तुझे तो इस लड़की से जरूर शादी करना, इसलिए वो देखा जैसे ये सब बिना धनुष उठाए तो होगा नहीं, तो जरा धनुष को उठा करके मैं देखूं तो सौरात में गया अकेले और धनुष को उठाने की चेष्टा की, बड़ी मुश्किल से ही लाभ गई, थोड़ा सा उठाया तो उसके अंदर में दब गया। अब तो उस धनुष के नीचे दब कर दबने से विवश हो गया, बहुत मुश्किल से किसी प्रकार से वो निकल करके बाहर आता कि अब जिस धनुष को प्रणाम करता हूँ अब नहीं आऊंगा। ऐसे देवता लोग भी आए, सब राजकुमार था, एक साथ से 10,000 राजा लोग मिलकर के धनुष को उठाने की चेष्टा करके ले आए वहां पर राजकुमारों के सामने, किंतु खिलाना मन पृथ्वी से उसका ऐसा संबंध हो गया है कोई नहीं था। उस समय ऐसी स्थिति देखकर के महाराज जनक सभा मंडप मंच पर पधारे और बोले, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मैं जानता कि ये कुछ भी वीर सुन्य है तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कौन करता, मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी आज धात्री पृथ्वी देवी वीरों से सुन्य हो गई। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े संत माल थे और वहां पर बोले, महाराज दशरथ, महाराज जनक, आप क्या कर रहे हैं, आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है, यहाँ रखो कि कोई भी राजकुमार या कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने आपको ऐसी भिखाई पूर्ण शब्दों को नहीं कहना चाहिए। धनुष की बात क्या, इस सारी पृथ्वी को विश्व ब्रह्मांड को लेकर तुम्हें गेंद की भांति लेकर के दौड़ सकता, पृथ्वी की परिक्रमा लगा दे। यदि अभी रामचंद्र जी का गुरु जी का सुनते ही सब सभा पे एकदम थर्म मार गई, शांत हो गई, तीन गाय ड्रॉप साइलेंट हो गए, साइलेंट हो गया। किंतु महाराज जनक को और उनकी पत्नी को और जनकपुर के निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, कुछ आशा अब क्षण आशा हुई, अब तक तो था कि ऐसा कोई चीज नहीं है और ये पानी लड़के रह जाए, किंतु जिस प्रकार से ये छोटा राजकुमार बोल रहा है मालूम होता है कि कुछ अनहोनी होनी है। तो जब कोई नहीं उठा सका और इस प्रकार की घटना हुई, उस समय में महर्षि विश्वामित्र जी ने आराम से कहा, अब तो कोई भी उसको उठाने लायक नहीं रह गया है, तो तुम प्रयास कर सकते हो। रामचंद्र जी सुनकर कुछ लज्जित से हुए, कुछ मुस्कुराए भी किंतु लज्जित होकर के सिंह के शावक के समान उठे, बड़ी नम्रता से किसको नीचा किए हुए, कोई अभिमान नहीं, हमें तो पत-पत पर अभिमान है, अभिमानों से घिरे हुए, इसलिए अभिमान मत करो किसी भी विषय का। कृष्ण और हमारे राम से सीखो ये कैसे जीवन का निर्वाह करना है, गुरुजनों का कैसा आदर करना चाहिए, माता पिता का, गुरु का कैसा सम्मान करना चाहिए, नहीं कर सकते भक्ति कैसे हो। यदि माता पिता सचमुच में सदाचार युक्त हैं तो पहले वो गुरु है, पीछे दीक्षा वाला और उसके पीछे तो भगवान कृष्ण नहीं आ रहा। इसलिए यदि सदाचार शून्य और उसके हिरण्यकशिपु और रावण की भांति हो तो मैं नहीं कहता, किंतु सदाचार संपन्न हो माता पिता तो उनका आदर करना। मैं तो भाई संन्यास लेने के बाद भी अपनी मैया का चरण छूता था और पिता था। महाप्रभु जी ने यह भी कहा, ये मत मैया यदि कहो तो मैं आज संन्यास छोड़कर के फिर तुम्हारे पास आ जाते थे, ये मैया मेरी ऐसी नहीं वैसे नहीं कहे, तो ये सब बहुत उदार है। तो उस समय में रामचंद्र जी सिंह के समान उठे, धनुष के निकट आया, उनसे प्रणाम किया। क्यों? शंकर जी का धनुष था, अपने भक्त को बहुत आदर देते। और इधर लक्ष्मण जी के तरफ में देखा, लक्ष्मण जी ने क्या किया, वीरासन से बैठ गए जैसे हनुमान जी बैठे, और पृथ्वी को अपने पैरों से दबा दिया, क्योंकि धनुष उठाते ही वो पृथ्वी उड़ जाएगी, फिर भूचाल आ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। धनुष का संबंध पाताल से है, क्योंकि सीता भी तो पाताल से निकली है, बहुत से कारण है। इसलिए लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग। ये स्वयं बलदेव जी हैं, भगवान का द्वितीय शरीर है। पृथ्वी को धारण करना, भूमंडल को धारण करना, या समस्त ब्रह्मांड तक को उनके श्वास जो आती है वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनती है, जो कि परस्पर को धारण किए हुए इन्हें शेष जी के रूप में भगवान लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबा दिया। और रामचंद्र जी ने पल झपते ही कब धनुष उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की, और धनुष कब तीन खंड टूट करके गिर गया ये पता ही नहीं। केवल बहुत जोर से शब्द हुआ, इतने जोर से शब्द हुआ कि पृथ्वी में न जाने क्या हो गया चारों तरफ। उधर परशुराम जी भी सुने, और इधर तो जहां धनुष टूटा चारों तरफ में बड़ा आनंद होने लगा, महिलाएं गाने लगी। सीता के हाथ में दिया गया वरमाला, बड़ी सुंदर खुशबूदार, और सीता जी भी तो ऐसी बैठी नहीं थी, केवल सिंदूर के अतिरिक्त सब श्रृंगार उनको कर दिया गया। एक तो ऐसे ही सुंदर जो कि कोई आभूषण न रहे तभी सुंदर, स्वयं लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी सीता जी हैं, वो उनको ले आई सखियां। किंतु आज प्रेम इतना आगाध हो गया रामचंद्र जी के प्रति, उनके प्रेम से उनके हाथ हिल नहीं सके, उठा नहीं सकी वरमाला देने के लिए, राम के तरफ में देख नहीं सकी, विवश हो गई, आंखों में आंसू भर गए। और फिर सखियों ने सहायता की, उनके दोनों हाथों को ऊपर उठवाया और रामचंद्र जी के गले में वरमाला दी। बलोतिया बल रामचंद्र जी, यहाँ तक तो हुआ ये, फिर बड़े शान शौकत से बधाई और ये बजने लगी। महाराज ने कहा अभी तुरंत हम एक दूत भेजे महाराज दशरथ के यहाँ, ये अपने पुत्र परिजन भाई बंधु सबको लेकर के महाराज दशरथ यहाँ है, और उनकी उपस्थिति में ये विवाह होगा। एक यहाँ से ब्राह्मण गया न्योता देने के लिए, ब्राह्मण नहीं बल्कि पहले नाई जाते थे, अब नाई का तो दिन गया, नाई जाते थे चिट्ठी हल्दी लगा करके और वहां की लिखी हुई। मैं ऐसे बहुत से पत्र हम लिख चुके हैं स्वस्ती स्त्री, तो वो लेकर के गया महाराज दशरथ को निमंत्रण करने के लिए। सभा में पहुंचा, उन्होंने बड़ा आदर किया, कहाँ से आए हो? महाराज जनक से, जनक के यहाँ से, बहुत आदर किया उस नाई का। तो इसने कहा कि महाराज ने आपको निमंत्रण दिया है, राम और लक्ष्मण की शादी वहां पर, केवल राम की शादी अभी तय हुई है, अपने बंधु बांधव अपने पुरोहित सबको लेकर के पहुंचिए वहां, परसों ही शुभ दिन दिवस है, इसलिए आज नहीं तो कल ही आप यहाँ से कुछ कीजिए सेनाओं के साथ में, राजकुमारों के साथ में, भारती ओ बच्ची इत्यादि के साथ। बड़े प्रसन्न हो, इसके लिए तुमने ये जो शुभ समाचार दिया, आज मैंने समझा विश्वामित्र किस लिए आए थे, और बस्ती जी ने ऐसा क्यों हमको देने के लिए लड़कों को कहा था, आज मुझे बात किया। इसलिए ऋषियों की बातों में जगत मंगल छिपा रहता है, हम लोग उसको नहीं समझते। साधु संत लोग जगत का कल्याण चाहते, तब फिर उन्होंने कहा कि इसको कुछ दे तो वो सोने का हार और क्या क्या चीजें वस्त्र और ये सब ले आकर के उसको देने लगे। तो नाई क्या बोला, नाई बोला जी महाराज मैं सीता को अपनी कन्या समझता हूँ, इसे जहाँ कन्या का दान देने का प्रश्न है मैं उसे कोई उसका कोई भी चीज कैसे ले सकता हूँ, ये तो हमारी वैदिक परंपरा नहीं है हिंदुओं की, मैंने लड़की समझ ही लिया है उसको, हमारा जनकपुरी का सभी लोग उसको अपनी कन्या मानते हैं, गर्व है कि ऐसी सुंदरी लड़की और महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते वहां के, ऐसे यदि नारी हैं तो और लोगों की तो बात क्या है, महाराज जनक की तो प्रशंसा सुन रखी ही थी। तो इस प्रकार से अब बारात लेकर के अब चल रहे हैं और इधर में हनुमान जी की भी आरती रूपी ये चल रहा उत्सव भी होने जाएगा, इसलिए अपनी कथा को यही तो विराम देता हूँ क्योंकि तो उधर में कुछ असुविधाएं होती हैं, इसलिए अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे, आज कुछ अधिक आए हैं, कल और भी अधिक आदमी श्रोता आए और कथा का भी लाभ उठाए, नई नई बातें बड़ी भीतर में रहस्यपूर्ण बातें हैं, इसलिए आप लोगों को सुन करके वैसा ही जीवन चरित्र बनाना है और ऐसा ही सुखी रहना आवश्यक है। आज यही कह सकते
Yeah. Yeah. करने हैं, कोटि कोटि बार सत्संग दंड की समिति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवीजन और यहाँ के सज्जन महोदय, माताएं और बहने, हमने कल रामचंद्र जी की कुछ कथाएं हमने सुनाई थी। आज उसी के कड़ी में फिर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ने हंस तोड़ा और सीता जी ने सुंदर की माला श्री रामचंद्र जी के गले में दी और फिर महाराज जनक ने अपने दूत भेजे और कहा कि सीता जी ने मेरी बेटी ने सुंदर में रामचंद्र जी के गले में जय माला डाल दी है, अक्सू टाइप में आकर के बेटी करा करके कन्या दान ग्रहण करें। तत्पश्चात महाराज दशरथ अपने सब वशिष्ठ जी को भर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सबको लेकर के यहाँ आए। अभी तब पिता जी के विवाह की बात थी। महाराज जनक ने कहा महाराज दशरथ सीता जी को तो राम के साथ में विवाह होगा ही, हमारी एक लड़की और है और हमारे भाई की दो लड़कियां हैं, ये तीन लड़कियों की शादी भी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ में कर दी जाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात वशिष्ठ जी से अनुमोदन लेकर के उन सबकी शादी हुई। अभी शादी होने के बाद में बारात जाने को थी, इतने में राजाओं ने कहा कि छीन लो सीता को, जो दुष्ट राजा था धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसे छीन लो। और सभी ले खो हल्ला करने लगे, आक्रमण करने की तैयारी में हो गए और इसी समय में बड़ी जोर से भयंकर आंधी आई, चारों तरफ से धूल उड़ने लगी, पेड़ भी उखड़ने लग गए और थोड़ी देर के बाद ही लोगों ने देखा ये आंधी और तूफान परशुराम जी के आने से हो रहा है। परशुराम जी वहां पर उपस्थित थे, क्रोध से उनका मुख लाल हो रहा था, गौ वर्ण पर शंकर जी का भस्म लड़ाया हुआ त्रिकुंड धारण की हुई थी, नजर बड़ी टेढ़ी, क्रोध मानो उगल रहे हैं और हाथ में धनुष बाण और तीव्र फटका कंधे पर धारण किए हुए वहां पर उपस्थित हुए। ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा जो जान मानो वो जानते न हो, पूछा जितने राजा लोग क्यों उपस्थित हुए हैं, अरे ये शंकर जी का धनुष ये कैसे टूट गया, ये कौन तोड़ दिया, राजा जनक बतलाओ किसने इस धनुष को तोड़ा, दुष्ट ने, वो मेरा शत्रु है, उसको इन राजाओं से अलग कर दो, नहीं तो राजाओं के साथ में तुमको तुम्हारे परिवार भर को और उस दुष्ट को सबको मार डालूंगा, उसको अलग कर दो जैसे शत्रु का विनाश, बताओ जल्दी से। महाराज दशरथ जनक जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। कैसे उत्तर दें, क्या उत्तर दें। और जनकपुर की स्त्रियां नर नारी कहां से ये तूफान आ गया, ये विपत्ति कहां से कैसे आ गई। बड़े संयोग से बड़ी अच्छी बातें चल रही थी और विवाह देखना था और इधर में ये ऐसी गड़बड़ी कर दी। और राजा लोग वहां पर जितने उपस्थित थे, जो अब तक खाना पीते और को हल्ला कर रहे थे ये सीता जी को छीन लिया जाए, डर के मारे चुपचाप बैठ गए, क्योंकि 31 बार पृथ्वी को क्षत्रिय को संहार कर दिया था। जो गर्भ रहे थे वही उनको देखते सभी लोग थर्रा गए और चुपचाप बैठ गए और सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे और वो हाथ जोड़ करके ऐसे तुम्हारा कल्याण हो सबको कहने लगे। इसके बाद में उन्होंने कहा, जनक तुम बतलाते नहीं तो रामचंद्र जी आगे आ गए और उनको प्रणाम करके बोले, गोसाई ये धनुष को तोड़ने वाला कोई सहज साधारण व्यक्ति है, कोई आपका दास ही होगा। कहिए ये आज्ञा कीजिए, आपका आपकी कौन सी सेवा करो। और ठीक से बतलाओ, तुम ही है, तुमने इसको धनुष को तोड़ा। इतने में लक्ष्मण जी सामने आ गए और हंस हंस करके बोलने लगे। वो बोले, गोसाई लड़कपन में बालकपन में तो हमने कितनी धनुहियां तोड़ी, किंतु आपने क्रोध नहीं किया और आज एक पुरानी धनुही तोड़ दी, तो इससे क्या हो गया, आपको क्रोध करने का कारण क्या है। वो और फर्क से बोले, हैं? इसको तू साधारण धनुही समझता है और धनुष और इस धनुष में कोई भेद नहीं देखता, ये हमारे गुरु जी का दिया हुआ ये धनुष है शंकर जी का और इसको साधारण धनुही कर रहा है। हमारे भैया ने क्या समझा, लक्ष्मण जी को ये तो समझते थे जैसे ये कोई मजबूत धनुष होगी, नई धनुष होगी, उन्होंने छू दिया ये टूट गया तो इसमें इतना क्रोध की जरूरत क्या है। साधु पुरुष तो क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध तो सब अनर्थों की जड़ है और आप साधु पुरुष हैं, ये कहां से ये महाकपटी धोकर ये बालक प्राण निर्भय बोल रहा है, जिसको तनिक डरता ही नहीं, ये हमको जानता नहीं है कि पृथ्वी को कर रहे हैं, इसी बात शत्रुओं से विहीन कर दिया है। विश्वामित्र को बचो और मेरी महिमा बतलाओ। लक्ष्मण जी फिर हंस करके मुस्कुरा करके बोले, भला आपकी महिमा दूसरा कौन बोलेगा, आप अपनी जो कर रहे हैं इससे कोई महिमा अधिक नहीं कर सकता है, अपनी महिमा आप ही बतला सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा तो इसको बुरा समझता है, आप ही अपने बखान कर दीजिए इतना चाहते हैं। ये तो प्राभारी दुष्ट है, दुष्ट है, इसको बच जाओ। विश्वामित्र विश्वामित्र जी मन ही मन में मुस्काए और बोले, मन ही मन में सोच रहे ये ऋषि इतना बोध है कि इसको मालूम नहीं कि ये कौन है, ये दोनों भाई नहीं तो इतना ये सब कुछ नहीं कर सकते, प्रभु इसका कल्याण कर। इतना कह करके वो बोले, जो क्रोध का तो कोई कारण नहीं दिखता, बच्चे बच्चे हैं, बर्रे और बच्चे दोनों एक ही होते हैं। बर्रे जानते हो पीले पीले वो जो काट देते हैं मुख में चारों तरफ में बर्रे होते हैं, ततैया। हाँ तो बर्रे और बच्चे दोनों एक ही होते हैं, ये भी बच्चा भी, आप उनके दोषों को क्षमा कर क्या क्षमा करते हैं, हमारे तरफ में ये तेरी नजर तभी भी देख रहा है। तो रामचंद्र जी भी उसमें उठ करके आए और बोले, प्रभु हम दोनों आपके दास, ये आपकी महिमा नहीं जानता था, आपको ऋषि के रूप में देखा, संत पद जने देखा, साधु जैसी जटा पर देखी, तो आपको साधु समझा, इनको संदेह हो गया ये साधु ऐसे नहीं होते, धनुष बाण और सत्ते नहीं लगाते, इसको देखकर के इसके मन में कुछ संदेह हो गया, इसलिए छोटा सा बालक जो कुछ बोल दिया इसके लिए हम आपके दास हैं आप समझ। अरे राम तुम तो बड़ा नम्र दिखता है, किंतु तुम्हारा भाई बड़ा निर्भय और तीस भरा जैसे सोने का खड़ा हो ऐसे सुनते, ऊपर से पानी देते हो और इसको ऐसे उसका दे, तुम दोनों ही एक जैसे हो, अभी मैं तुमको दोनों को मार। लक्ष्मण जी बोले यहाँ तो कोई कुमड़ा की बतिया नहीं है, कुमड़ा छोटा होता है ना, बच्चे जब लगता है तो उसको देखो ये फल हुआ बस समाप्त हो गया मर जाएगा, तो यहाँ तो कोई कुमड़ा बतिया नहीं है जो बार बार ऐसे दिखला रहे हैं, इसको सब दिखला रहे हैं, देखो तो फिर ऐसे ही बातें करता है। ये बोले कि ये हंस करके मुस्कुरा दिए लक्ष्मण जी और उनको कह रहे हैं कि और क्रोध करे, क्रोध कितना होगा अपनी शक्ति चली जाएगी और विवेचना करने के लिए शक्ति नहीं रह जाएगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। गीता में कृष्ण ने भगवान ने भी बतलाया है क्रोध समस्त अनर्थों की जड़ है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए गुरु सबसे पहले कहता है क्रोध मत, क्रोध मत करो, विचार बुद्धि पूर्वक सब कुछ करो। तो इन्होंने कहा क्योंकि आप बार बार मुझे अंगुली दिखलाते हैं और धमकी देते हैं, तो मैं ऐसा समझता कि पृथ्वी में जो कोई भी की हो और रघुपुर के क्षत्रियों को यदि उसका एक युद्ध के लिए उसको प्ररोचना दे तो वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, आप बार बार ऐसा क्यों दिखलाकर तो लड़ ही लीजिए, जरा फट्टा को चला करके तो देख लीजिए, देखें अभी देखो इतना दिन तक सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है। रामचंद्र जी की बोले देखिए साधुओं को तो ये सम्मान करता था किंतु आपको भीड़ के रूप में देखा फट्टा और अनुष्पा, इस बच्चे की गलती क्या है और उस पर भी आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी हो जो युद्ध के लिए ललकारता है तो सोच बन की चाहे वो बराबर का हो या बड़ा हो या छोटा उसे जरूर लड़ता है, रणभूमि पीट नहीं जीत जाएगा और भले ही मर जाएगा इसलिए आप धमका रहे हैं, इसलिए वो उस बच्चे ने ऐसा कहा और उसने ठीक कहा, हम कुछ क्या कहा। और ये सोच करके उन्होंने कहा क्योंकि लड़ने की बात है तो आप लड़ सकते हो, उन्होंने परशुराम ने कहा कि या तो लड़ो युद्ध करो हमसे अथवा दूसरे ने कहा तो ये जो तुम्हारा नाम है नाम ये छोड़ दो नहीं तो मैं ही खंड खंड तुम्हें कर दूंगा। उनका जी नाथ मेरा नाम तो छोटा सा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम और मुझ में एक गुण है धनुष का धनुषधारी और आप में तो सम दम शिक्षा इत्यादि जो ब्राह्मणों के गुण है वो 9 गुण या कितने 12 गुण है तो आप में हमसे 12 गुण आप क्यों कर रहे हैं, यदि युद्ध चाहते हैं तो हम क्षत्रिय कुल के हैं सूर्य कुल में आए हैं हम लोग युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, प्रकार से कहे तो उनको भाई ऐसा कौन कर सकता है मुझसे युद्ध के लिए, ऐसा तो पृथ्वी ब्रह्मांड में नहीं देखता, ये जितने राजा और सब लोग हैं महाराज जनक से लेकर के महाराज दशरथ और ये सभी लोग दर्शन मारे थर्रा रहे हैं और ये दोनों युवक इस प्रकार की निर्भीक होकर के बातें कर रहे हैं, कौन है? समाधि में गया और देखा ये तो भगवान रामचंद्र है, ये तो भगवान लक्ष्मण जी है। बस शांत चित्त हो गया। हाथ जोड़ कर बोले, प्रभो आप कृपा करें। है कम क्या विकम संदेह, ये मेरा सानुष है नया, हमारे गुरु का दिया हुआ शंकर जी का, वो तो सचमुच में